ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लाउडली हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ के बारे में। तो आप सबने दर्शन किया है जगन्नाथ देव का। तो भगवान जगन्नाथ, उनके नाम से पता चलता है कि वो एक या दो या तीन व्यक्तियों के नाथ नहीं हैं। इस जगत में जो भी हैं उसके वो नाथ हैं, इसलिए वो जगन्नाथ हैं, हर एक के नाथ हैं। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान का गुणगान करना या जगन्नाथ के बारे में श्रवण करना एक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। कौन बोलती हैं? ये उत्तरा के ऊपर जब कष्ट आ रहा था, वो गर्भवती थी, और जब अश्वत्थामा ने उसका जो गर्भ है, जिसके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, उनका विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और ऐसा ब्रह्मास्त्र को वो देख रही थी कि मेरी ओर आ रहा है। उसको अपने लिए कष्ट नहीं था या अपने लिए वो चिंता नहीं कर रही थी, बल्कि वो चिंता कर रही थी किसका? उसके गर्भ में जो पांडवों का आखिरी वंशज है परीक्षित। तो ऐसी जो उत्तरा है वो बहुत अधिक विवलता से अपने हृदय के साथ हृदय पूर्वक कृष्ण को पुकारती है, और वो क्या कहती है? पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, तदहं नान्य पश्यत् यत्र मृत्यु परस्परम्। कि मैं देख रही हूं कि हे जगतपते, जगत के असली पति कौन है? कृष्ण है। पति का मतलब ये नाथ, स्वामी, मास्टर। तो इसलिए ऐसी जो उत्तरा है उसके पास तो बहुत सारे स्वामी थे, पांडव थे उसके सामने इतने बलशाली, या और भी कई सारे बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन उत्तरा ने किसी और को पुकारा नहीं। उत्तरा ने किसको पुकारा? कृष्ण को। और कौन से शब्द से पुकारा? जगत पते, कि आप जगत के असली स्वामी हो, जगत के आप नाथ हो। तो इसलिए कई बार जब हम भगवान जगन्नाथ को देखते हैं, जनरली जैसे मेरे जीवन में भी, मैं पहली बार जब जगन्नाथ को देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग किसका पूजा या उपासना या किसकी वर्शिप कर रहे हैं, किसके रथ को खींच रहे हैं। हाँ, तो उनके बारे में हाँ कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम भक्तों के संग में आते हैं और भक्तों के संग में आने से सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या आ जाती है कि हम कृष्ण के नजदीक जाने लगते हैं। हाँ, क्योंकि डिवोटीज कहाँ हैं, कृष्ण के करीब हैं, तो हम भक्तों के करीब जाते हैं, उनके संग के माध्यम से हम भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं हम कृष्ण के क्लोज महसूस करते हैं, हाँ कृष्ण के बहुत करीब हम अनुभव करते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने भी कहा था मृत्यु के समय कि मुझे क्या करना चाहिए, हाँ तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति तव्य च देह पूज्य च नित्यदा, कि परम भगवान हरे कृष्ण का क्या करो, आप गुणगान करो, उनके बारे में श्रवण करो, उनकी सेवा में लगो। हाँ तो इस प्रकार से ये हमारा थोड़ा सा प्रयास है कि हम अपने जीवन में सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे। हाँ नहीं तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जन्म लेता है और मरने तक अंत तक वो किसी ना किसी का गुणगान करने में अपना जीवन बिताता है, या तो वो आकाश के तारे तोड़ने की बात करता है या फिर ऑफिस में किसी बॉस के गुणगान करता है। उतना ही नहीं, या तो अपने घर में कुत्ता है तो उसका गुणगान करने में लगा रहता है, कुत्ते की पूंछ कितनी सुंदर है, उसका कलर कैसे है, वो दो पांव कैसे ऊपर खड़ा होकर बात करता है। हाँ तो वास्तव में ये मनुष्य जीवन कृष्ण के अलावा किसी का गुणगान करने के लिए नहीं मिला है। जब ये जीव कृष्ण के अलावा किसी और का गुणगान करती है तो शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि वो जीव क्या है, असती दार्दुरी केव, वो जो जीव है वो मेंढक की जीव है, और इतना ही नहीं बल्कि वो सती नहीं है। सती मीन्स पतिव्रता, चेस्ट लेडी। तो ये जो जीव एक स्त्री के समान है, इसको हमें कृष्ण का गुणगान करने में लगाना चाहिए। जब कृष्ण के अलावा ये जीव किसी और का गुणगान करती है तो वो जीव क्या है, असती है, सती नहीं है, चेस्ट नहीं है। तो इसलिए जो भगवान जगन्नाथ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे त्रिभुवन के नाथ है, जगन्नाथ स्वामी, उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कृष्ण को कहा जाता है अखिल रसामृत मूर्ति। क्या कहा जाता है, अखिल रसामृत मूर्ति, सारे रसों के वो सागर है, सारे जो रस है 12 रस है उनमें से प्रमुख 5 है और 7 जो गौण रस है, तो इन सारे रसों का जो मूर्तिमान स्वरूप है या मिलित विग्रह है वो कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को कहते हैं रसराज श्री कृष्ण। क्या कहते हैं, रसराज श्री कृष्ण। हम भी अपने जीवन में रस आस्वादन करने के लिए भटक रहे हैं। हाँ कभी स्त्री का वेश धारण करते हैं, कभी पुरुष का वेश धारण करते हैं, हाँ कभी बॉस बन जाते हैं तो कभी गुलाम बन जाते हैं। हाँ सारे जो दिन रात का जो दिनचर्या है, हमारा जो स्ट्रगल है, वो केवल इसलिए है कि हम किसी रस के पीछे भाग रहे हैं पागल की तरह। एक कुत्ता, हाँ वो जो हड्डी है उसमें कुछ रस नहीं है, उस हड्डी को बारंबार चबाने के लिए, चकने के लिए क्या करता है, भागता है, दूर दूर भागता है। तो उसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन है या मनुष्य है, वो किसी न किसी रस के लिए पागल के बातें दौड़ रहा है, लेकिन वास्तव में उसको पता नहीं है। हाँ विषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिना रसवर्जम रसोपेश परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि परम रस को प्राप्त करने के लिए उसको लालयत होना चाहिए। हाँ इसलिए कृष्ण के बारे में वर्णन आता है तो शास्त्र कहते हैं सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। तो वल्लभ कहते हैं कि हे सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर, रूप गोस्वामी कहते हैं अपने छोटे भाई को, हे वल्लभ अनुपम, हाँ कृष्ण क्या है, परम मधुर है। मधुर का मतलब क्या है, स्वीट है। कृष्ण से अधिक स्वीटनेस या मधुरता इस जगत में नहीं है। सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर, और क्या क्या मधुर है कृष्ण में, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। कृष्ण में सुंदरता, उनका माधुर्य, उनका प्रीति प्रेम, और उनके जो विलास, विलास का मतलब है लीलास, कार्यकलाप, ये सारे मधुर है, स्वीट है। इसलिए वल्लभाचार्य ने कृष्ण के हर एक अंग का वर्णन कैसे किया है, मधुरम मधुरम, मधुर है, मधुर है, स्वीट है। हाँ, इस भौतिक जगत में भी हम स्वीट हार्टेड को ढूंढते हैं, है कि नहीं? लेकिन वास्तव में कोई स्वीट है तो वो कौन है, कौन है? आपको कुछ डाउट है इसमें? आपको कैसे पता कि कृष्ण स्वीट है? हाँ, हमने हमने चखा है कृष्ण की स्वीटनेस को। हम चखते हैं तो बाकी भौतिक स्वीटनेस के लिए हम पागल नहीं होते, लालायत नहीं होते। हाँ, जिसने भी कृष्ण के मधुरता का अनुभव किया है, इस भौतिक जगत की मधुरता उसके लिए क्या हो जाती है, फीकी नजर आती है, फीकी लगती है। लेकिन अभी भी हमारा हृदय हाँ इस भौतिक मधुरता के पीछे लालायत है और कृष्ण के स्वीटनेस को हमने अनुभव नहीं किया है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, हाँ वो एक श्लोक में कहते हैं रूप गोस्वामी कि आपको यदि अपना जो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, पति है, समाज है, अपना धन है, अपना सौंदर्य है, अपना बल है, अपना क्वालिफिकेशन है, इसके प्रति आपको बहुत आसक्ति है, ये बहुत मधुर लग रहा है, तो गलती से कहां मत जाना, वृंदावन मत जाना। तो आगे कहते हैं यदि गए भी वृंदावन तो वहां यमुना के तट पर जो केशी घाट है जहां भगवान कृष्ण ने केशी असुर का वध किया था, वहां मत जाना। लेकिन रूप गोस्वामी आगे कहते हैं कि ठीक है, आप वहां पहुंच भी गए लेकिन वहां त्रिभंग ललित रूप में श्याम सुंदर, हाँ श्यामल, श्याम सुंदर वर्ण में, नील वर्ण या श्याम सुंदर वर्ण में एक युवक बालक खड़ा है और जिसने क्या किया है, बरहावतम, हाँ उसने अपने पगड़ी पर एक मोर पंख धारण किया है और रंध्रान वेनोर अधर सुदया वाजयत गोप वृंदे, और उन्होंने अपने अधरों के ऊपर बंसी या वेणु को धारण किया है और अपने कोमल ओठों के द्वारा उसको बजाते रहते हैं। उनको जाकर क्या करना, गलती से मत देखना, देखोगे तो क्या होगा, भौतिक जगत के प्रति आपका जो आकर्षण है, स्वीट जो आपको लग रहा है, वो भौतिक जगत कैसे लगने लगेगा, कड़वा लगने लगेगा और कृष्ण के प्रति और अधिक मधुरता को आप अनुभव करोगे। और वास्तव में यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि मृत्यु हमारे नजदीक आ रहा है, हम बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं इस शरीर को त्यागने के लिए, लेकिन उससे पहले कृष्ण हमें कैसे लगने चाहिए, मधुर लगने चाहिए। इसलिए कृष्ण के अंदर, कृष्ण क्यों परम भगवान है, बाकी सारे अवतार है या विष्णु है या फिर बाकी डेमीगॉड्स आदि है, लेकिन कृष्ण कृष्ण इसलिए परम भगवान है कि उनके अंदर ये चार प्रकार की स्वीटनेस है, मधुरता है, माधुर्य है। हाँ, वो माधुर्य क्या है, प्रेम माधुर्य, प्रेम कृष्ण में जो उत्कृष्ट चीज है वो है उनका जो प्रेम है, उनका अपने भक्तों के प्रति जो प्रीति का व्यवहार है, प्रेम माधुर्य। और दूसरा क्या है, रूप माधुर्य। कृष्णा इतने अधिक सौंदर्यवान है, हाँ कि श्रीमती राधा रानी एक बार कृष्ण के सौंदर्य को देख रही थी, कृष्ण दूर से आ रहे थे, श्रीमती राधिका जब कृष्ण को देख रही थी क्या देखा उन्होंने, कि कृष्ण के जो मुकुट है, पगड़ी है, उसके ऊपर जो मोर पंख लगा हुआ है, केवल उस मोर पंख को कई समय से देख रही है। कृष्ण आके चले भी गए लेकिन फिर भी हाँ क्या देख रही थी, मोर पंख को देख रही थी। तो इतना सौंदर्यवान है, बाकी सारे अंग तो आप छोड़ ही दो, हाँ कृष्ण के सौंदर्य की तुलना नहीं की जा सकती। मुह्यंती यत सूरया, देवतागण भी कृष्ण के सौंदर्य से, माधुर्य से, इवन लक्ष्मी भी आकृष्ट हो जाती है। इसलिए कृष्ण में जो उत्कृष्ट गुण है दूसरा, वो है रूप माधुर्य। हम सब भी रूप को देखना चाहते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं हाँ किसको देखो, कृष्ण के सौंदर्य को देखो। हाँ, तो कृष्ण के अंदर एक तो प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य और तीसरा है वेणु माधुर्य। वेणु मीन्स, वेणु क्या है, भगवान बांसुरी को बजाते हैं, कोई और भगवत अवतार इसको धारण नहीं करता, केवल 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 कृष्ण अपने अधरों के ऊपर वेणु का वादन करते हैं और खुद दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं और जो उसको सुनता है वो भी क्या करता है, कृष्ण के दिव्य आनंद को अनुभव करता है। और चौथी चीज शास्त्र कहते हैं कि भगवान के अंदर क्या है, लीला माधुर्य, लीला भगवत लीला, जो कार्यकलाप कृष्ण के ने किए हैं वो और कोई भगवत अवतार आदि नहीं कर सकता। बाल लीलाएं हैं उनके, यौवन पौवर्ण की लीलाएं हैं उनकी, जो किशोर अवस्था की लीलाएं हैं, सारी लीलाएं कैसी हैं, यश सुनवताम न वित्रुप्याम स्वादु स्वादु पदे पदे, जब इनको हम सुनते जाते हैं तो संतुष्टि नहीं होती, ऐसे लगता है कि और सुनना है और पीना है। हाँ, ये कृष्ण के कार्यकलापों का एक गुण है, दिव्य गुण है। हाँ, क्योंकि वो क्या है, नॉर्मल नहीं है, भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ऐसे भगवान अवतरित होते हैं, अपने अलग अलग रूपों को धारण करते, नाना अवतार मकरोत भुवनानि किंतु कृष्णा स्वयं समभवत परम पुमान यो। तो कृष्ण अलग अलग रूपों को धारण करते हैं और उनके रूपों का धारण करने का एक में उद्देश्य क्या है, भक्त सुख देते, क्या है, भक्त सुख देते। कृष्णा केवल अलग अलग रूपों को धारण करते हैं, उनका एक में उद्देश्य है कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। तो वास्तव में आनंद की खोज में हम हैं, सुख की खोज में हम हैं, तो लेकिन हमें क्या करना होगा, भक्त बनना होगा। भक्त बने बिना दिव्य आनंद की अनुभूति असंभव है। ये जगत तो स्वप्नवत है, डे ड्रीम और नाइट ड्रीम, दिन में भी हम काम कर रहे हैं वो स्वप्नवत है, रात को सोते तभी भी स्वप्न की दुनिया में होते हैं। तो वास्तव में सुख के लिए हमें भक्त बनना आवश्यक है, भक्त बने बिना सुख की अनुभूति हम नहीं कर सकते। तो ऐसे कृष्ण का एक में उद्देश्य इस जगत में आने का है, भक्त सुख देते, परित्राणाय साधुनाम, अपने भक्तों को क्या करना, दिव्य आनंद प्रदान करना, सुख प्रदान करना। तो इसलिए भगवान आनंद लीला मय विग्रह, कृष्ण को दूसरा नाम क्या है, आनंद लीला मय विग्रह। ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान कृष्ण या जगन्नाथ कि वो क्या है, उन कार्यकलापों के द्वारा, उन लीलाओं के द्वारा केवल आनंद का वर्धन करते हैं, क्या करते हैं, आनंद को बढ़ाते हैं। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतः स्वादनम, कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं, अलग अलग कार्यकलाप हैं, वो केवल आनंद को बढ़ाते, उस सागर को इतना बढ़ाते हैं कि भगवान और उनके भक्त उस आनंद रूपी सागर में डूब जाते हैं, गोते लगाते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्णा जोर से
कृष्णा,
और जोर से
हरे राम 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 हरे हरे।
तो भक्त बनना है तो आपको साइलेंट में नहीं रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लाउड, तो लाउड चांट करना चाहिए। कृष्णा हमें क्या करते हैं, डुबो देते हैं उनके लीलाओं में। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरा मन कब कृष्ण के इन कार्यकलापों में मग्न हो जाएगा, स्फुरु का मोर मने, मेरे मन में कब ये कृष्ण के लीलाएं नेचुरली स्फुरित हो जाएगी, भगवान के जो कार्यकलाप है। तो ऐसे कृष्ण भगवद गीता में कहते, सुनो सुनो अर्जुन, क्या करो क्या करो, सुनो। भगवद गीता में आप हर चैप्टर में देखोगे अर्जुन थोड़े डेले हो जाते हैं श्रवण करने के लिए, तो आप भी थोड़ा ऐसे बैठ जाइए सीधा, अगर कम समय है तो सुनने के लिए कैसे होना चाहिए, हमें तत्पर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं चाहिए, श्रवण करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए कुछ समय के लिए। तो अर्जुन भगवद गीता सुनते सुनते थोड़े से डिले हो जाते थे, तो भगवान कहते अर्जुन तत् सुनो, अरे सुनो ध्यान से सुनो, फिर अर्जुन क्वेश्चन पूछते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण केवल ऑर्डर नहीं देते कि तुम सुनो, मैं बोलते ही रहूंगा, लेकिन भगवान ने उससे पहले क्या किया था, बहुत सुना था। इसलिए कृष्ण के बारे में कहा जाता है, एक आचार्य कहते हैं, परमानंद हे माधव पदुम गलुची मकरंद से मकरंद पान करी। तो ऐसे वो कहते हैं कि हे परमानंद माधव कृष्ण, सच से चका डोलांक पाए रे मन मोराहु निरंतरे, कि मेरा मन हाँ ऐसे भगवान के प्रति फिक्स हो जाए जिनकी आंखें कैसी है, कैसी है नहीं मैं क्या कर रहा हूं, कैसी है गोल, कैसी है जोर से बोलिए, हाँ राउंड शेप है। जगन्नाथ की आंखें कैसी है, कैसी है गोल है। तो ऐसे वो एक भक्त कहते हैं से चका डोलांक पाया रे, ऐसे जो जिनकी आंखें गोल चक्के के समान है राउंड शेप में है, हाँ से चका डोलांक पाया रे मन मो राहु निरंतरे, मेरा मन क्या हो जाए उनके चरणों में सदा फिक्स हो जाए। तो वास्तव में ये जो जगन्नाथ का स्वरूप है हाँ ये रहस्यमय है। उन्होंने अर्जुन को केवल ये नहीं कहा कि तुम सुनो, लेकिन भगवान ने उससे पहले बहुत क्लासेस क्या कर किए थे, क्या कहते सुने थे, इसलिए वो बोल पा रहे थे। भगवद गीता का लेक्चर क्यों दे पा रहे थे कि उन्होंने ब्रज में भी सुना था और जब वो द्वारका में थे तभी भी एक लंबा लेक्चर सुना था, किसके द्वारा रोहिणी के द्वारा, और जिसके कारण उनकी हालत क्या हो गई, हाँ इतनी बड़े बड़े आंखें हो गई, ये रूप ही बदल गया। तो वास्तव में ऐसे जो जगन्नाथ देव है या कृष्ण है वो केवल हमें हमें करने के लिए नहीं कहते बल्कि स्वयं ही अपने आचरण से सिखाते हैं, चाहे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो या चाहे द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में हो। तो ऐसे भगवान के ये जो दशा है ये इसलिए हुआ या इस प्रकार की आंखें, इस प्रकार का स्वरूप, इस प्रकार का रूप, ये रहस्यमय रूप इसलिए हुआ कि उन्होंने क्या किया था, एक लेक्चर अटेंड किया था। क्या किया था, केवल एक लेक्चर अटेंड करने से हाँ बदलाव आ गया। अभी हम कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं यहाँ याद है आपको, हाँ लेकिन हम लेक्चर्स में होते नहीं है, हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए यहाँ नहीं आते, हम अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने एजेंडाज, अपने अपने पर्सनल मोटिव्स को लेकर यहाँ आकर बैठते हैं। तो जब इस भावना को लेकर हम आएंगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो ऐसे बहुत दिनों तक ऐसे बैठते रहोगे सुनते रहोगे हाँ लेकिन अपने सही उद्देश्य को लेकर नहीं आओगे, सही एटीट्यूड के साथ, सही भावना के साथ नहीं श्रवण करोगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ कृष्ण एक ही लेक्चर अटेंड किया और उस लेक्चर में कैसे हो गए, वो डूब गए, एक साथ हो गए, इतना अटेंशन हाँ। और किसके द्वारा सुना था उन्होंने, अपनी माता के द्वारा, रोहिणी के द्वारा हाँ। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ बहुत विशेष हाँ विशेष विग्रह है, विशेष डेटी है हाँ। इसलिए उन्होंने जो लेक्चर सुना था उसका टाइटल था ब्रज लीला कहानी। क्या था, ब्रज लीला कहानी, एक स्टोरी सुना, कहा का स्टोरी था वो, ब्रज का, वृंदावन का हाँ। तो ऐसे भगवान हाँ विशेष रूप से जब अपने ही बारे में श्रवण करते हैं और अपने भक्तों के ग्लोरीज को सुनते हैं हाँ तो उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो वास्तव में कृष्ण भावना बहुत पावरफुल है लेकिन हम उसमें अटेंटिव हो जाएं, हमारे जीवन में हम एक क्षण कृष्ण के प्रति सरेंडर हो सकते हैं, उनके प्रति आसक्ति विकसित कर सकते हैं, लेकिन हम क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, चाहे हमारी सेवाओं में, चाहे हमारे पर्सनल साधना में, हर कार्य में जब हम सावधान होंगे तो नेचुरली उसका रिजल्ट क्या होगा कि हम कृष्ण के प्रति बहुत प्रगाढ़ रूप से आसक्त हो जाएंगे। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के जो विग्रह हैं हाँ ये कलियुगा के विग्रह हैं, कलियुगा के, क्योंकि हर हर युग के लिए विग्रह है, हर युग के लिए धाम है, हर युग के लिए क्या है, नाम है। क्या है, तीन चीजें, हर युग के लिए नाम है, हर युग के लिए धाम है और हर युग के लिए क्या है, विग्रह है। तो कलियुगा के लिए नाम क्या है, जोर से लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुगा का ये नाम है, हमने कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, कलो दोषो निधि राजन अस्ति एक महागुना कीर्तना देव कृष्णश्च मुक्त संघ परम रजे। कृष्ण के नामों का कीर्तन कलयुग का मंत्र है, और कलयुग के लिए धाम क्या है? नवद्वीप मायापुर। और कलयुग के विग्रह कोई है तो कौन से विग्रह है कलयुग के? जगन्नाथ देव भगवान पर्सनली। हर युग में भगवान किसी धाम में रहते हैं, तो कलयुग में स्वयं दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ अपना जो धाम है नीलाचल या जगन्नाथपुरी वहां निवास करते हैं। तो आप सब मेरे पीछे दोहराइए, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है जगन्नाथ के बारे में, जहाँ कहते हैं कि मैं ऐसे नीलाचल में निवास करने वाले भगवान जगन्नाथ जो बलभद्र और सुभद्रा देवी के साथ हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। तो ऐसे भगवान सदैव अपना जो दिव्य धाम है नीलाचल में निवास करते हैं। जो नीलाचल का मतलब है कि नील पर्वत, वो जो भगवान जहाँ जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं वो नील पर्वत है जिसके ऊपर भगवान स्वयं विराजमान है। अपनी जो सिस्टर है सुभद्रा देवी और बलराम के साथ, तो ऐसे भगवान अपने उस दिव्य धाम में रहते हैं जो धाम कई नामों से जाना जाता है। शंख क्षेत्र है, पुरी है, जगन्नाथपुरी है, श्री क्षेत्र है, विप्रलम्बक क्षेत्र है, तो ऐसे कई नामों से जगन्नाथपुरी का परिचय है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का गुणगान हम कुछ समय के लिए करेंगे। हमारे पास कितना समय है? टाइम मुझे पता होना चाहिए, नहीं तो मैं फिर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। तो ठीक है, हमारे पास आधा घंटा बचा है। ठीक है, तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का वर्णन हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है कि किस प्रकार से ये जो विग्रह हैं, किस प्रकार से कृष्ण इस स्वरूप को धारण करते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बार जो अलग अलग जो ऋषि हैं उन्होंने जयमणि ऋषि को निवेदन किया कि हम जो ये नीलाचल धाम है जहाँ भगवान दारू ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं, दारू का मतलब है ऊड या लकड़ी, तो भगवान जगन्नाथ के विग्रह इससे बने होते हैं, और ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म, परम सत्य कृष्ण, तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और नीलाचल धाम की ग्लोरीज को समझना चाहते हैं। तो उन्होंने जब ये कहा और तो उन्होंने कहा शुन्वधम मुनया सर्वे रहस्यम परमम हि तद। हे मुनियों, आप लोगों के अंदर वंडरफुल डिजायर है, आप लोग जगन्नाथ के बारे में सुनना चाहते हो, हाँ, लेकिन ये क्या है? शुन्वधम मुनया सर्वे रहस्यम परमम हि तद। तो भगवान जगन्नाथ का जो ये विग्रह है, भगवान जगन्नाथ है, ये तो मिस्टीरियस है, रहस्यमय है स्वयं, और उनका धाम भी क्या है? रहस्यमय है। तो इस प्रकार से जब इन वैष्णवों की या इन भक्तों की डिजायर थी, तो जयमणि ऋषि ने बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि एक बार ब्रह्मा ने भी इसी प्रकार की इच्छा को जागृत किया था, इस प्रकार की इच्छा को लेकर वो भगवान कृष्ण का भजन करने लगे थे। तो ऐसे ब्रह्मा ने जब ये भौतिक जगत का निर्माण किया, सृष्टि किया भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो वो बहुत दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए हैं? क्योंकि उनको इसलिए दुख लग रहा था कि मैंने ऐसी चीजें, ऐसा ये जेल बनाया है ये भौतिक जगत, जो भी जीव इस जगत में आएगा वो कष्ट प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता, मतलब यहां आएगा तो फंस ही जाएगा और पूरे जीवन भर लाखों करोड़ों जीवनों तक केवल कष्ट ही कष्ट अनुभव करेगा, दुख ही दुख अनुभव करेगा। तो उन्होंने कहा क्या सेवा मुझे मिली है? सेवा मिली है तो भी क्या मिली है? सारे जीवों को बांध के रखो, जकड़ के रखो, मैंने सृष्टि बना दी। तो ऐसे ब्रह्मा बहुत अधिक दुखी हो गए थे। तो फिर ब्रह्मा ने थोड़ा तपस्या किया और उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा नमस्ते जगदाधार शंख चक्र गदाधर यन्नाभि पंकजा देवो जातो हो विश्व सृष्टि कृत, कि हे गदाधर मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, लेकिन मेरे हृदय में बहुत अधिक दुख है। क्या दुख है? कि मैं देख रहा हूं कि जगत में जो भी जीव आएगा वो कष्ट ही अनुभव करेगा, तो इसके लिए मुझे कुछ सॉल्यूशन दो। तो भगवान लक्ष्मी के साथ प्रकट हो जाते हैं गरुड़ के ऊपर कृष्ण, और वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा सागर शोत्तरे तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे, कि एक स्थान है, एक ऐसा स्थान है जिस स्थान में मैं सदैव पर्सनली निवास करता हूं, और कोई भी भौतिक जगत का जो जीव है उस स्थान में जाता है, मेरा दर्शन करता है, उस स्थान में निवास करता है, तो निश्चित रूप से इस जगत के भौतिक कष्ट उसे तंग नहीं करेंगे, और इस भौतिक जगत से वो सरलता से मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है केवल उस मेरे पवित्र भूमि का स्पर्श करने मात्र से। हाँ, तो उन्होंने कहा है ये भूमि, ब्रह्मा को वो कहते हैं महानदी के दक्षिण की ओर सागर के तट पर ये मेरा स्थान है जो जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। फिर हम सुनते हैं किस प्रकार से ब्रह्मा जी फिर जाते हैं उस स्थान में, और वो जाते हैं तो ब्रह्मा और फिर यमराज भी आते हैं उनके साथ। तो ये दोनों जब देखते हैं और वो और जानना चाहते हैं, तो भगवान लक्ष्मी को कहते कि आप क्या करो, इन दोनों को एक लेक्चर दे दो। तो लक्ष्मी इस धाम की ग्लोरीज को सुनाती हैं। तो यमराज सोचता है कि अरे मेरे लिए सेवा बचा ही नहीं, मेरे पास कौन आएगा नरक यातना भुगतने के लिए, मैं तो खाली बैठा ही रहूंगा। तो लक्ष्मी ने कहा कि बाकी सारा जगत के लोग तुम्हारे अंडर हो सकते हैं, लेकिन जो भी मेरा ये जो धाम है नीलाचल जगन्नाथपुरी, इसमें आपका प्रभाव से कोई प्रभावित नहीं होगा, वो आपके दायरे से बाहर है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा भी और यमराज आदि उस धाम का शरण ग्रहण करते हैं, और वहां रहकर क्या करते हैं सदैव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब ब्रह्मा से इन सबने सुना तो लक्ष्मी ने कहा कि हे ब्रह्मा, लक्ष्मी से जब इन दोनों ने सुना तो उन्होंने कहा लक्ष्मी ने कि हे ब्रह्मा और हे रवि नंदन, रवि सूर्य के पुत्र है यमराज, कि आप क्या करो, आगे चलकर सत्ययुग में एक महान राजा जन्म ग्रहण करने वाले हैं जिनका नाम क्या है, इंद्रदिम्नो नाम राजा युगे सत्य भविष्यति, कि वैष्णव सर्व यज्ञानां महार्ता शास्त्र कोविदा, कि आगे चलकर इंद्रदिम्नो जो राजा है वो प्रकट होने वाले हैं, आप दोनों उनकी सहायता करो। तो आगे चलकर फिर हम देखते हैं कि भारत वर्ष में जो उज्जैन है अवंती, वहाँ उज्जैन का पहला नाम अवंती देश था, तो वहाँ राजा इंद्रदिम्न प्रकट हुए, और राजा इंद्रदिम्न इतने अधिक फेमस थे अपने दिव्य गुणों के कारण, और इंद्रदिम्न महाराज के हृदय में केवल एक इच्छा थी, और उनके पत्नी जिनका नाम था गुंडीचा, उनके हृदय में भी सेम डिजायर थे। क्या इच्छा थी? शास्त्र कहते हैं कि वो हमेशा किसी को मिलते थे राजा इंद्रद्युम्न, तो एक ही प्रश्न पूछते थे, वो कहते थे यत्र साक्षात जगन्नाथम पश्यामि तेन चक्षुषा, कि मैं अपने आंखों से फेस टू फेस जगन्नाथ कृष्ण को देखना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि ये ऐसे जगन्नाथ देव या कृष्ण को कहां मैं देख सकता हूं, कहां है परम भगवान जो सदैव अपने दिव्य सौंदर्य पूर्ण रूप में वो निवास करते हैं। तो ऐसे बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के राजा इंद्रद्युम्न थे, सुशील थे, पुण्यात्मा थे, सत्यवादी थे। तो ऐसे इंद्रद्युम्न राजा साधु या वैष्णव की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते थे, और उन्होंने अपने जो अंतपुर है महल है जहाँ वो निवास करते थे उसी के साथ क्वार्टर्स रूम्स बनाए थे, जो भी उनके राज्य में साधु जाते थे वैष्णव जाते थे उनके लिए वहां निवास करने के लिए वो स्थान प्रदान करते थे, और हमेशा एक लालसा को वो साधुओं से पूछते थे। ट्रैवलिंग मॉन्क होते हैं जो भ्रमण करते रहते थे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो कोई भी उनको मिलता था इंद्रद्युम्न राजा को तो वो हमेशा उनको पूछते थे कि आप बताओ कौन सा वो स्थान है जहां मैं साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण को देख सकता हूं अपने दिव्य अपनी आंखों के द्वारा। हाँ, तो फिर एक दिन वो जो राजा हैं, हाँ, उन्होंने एक जब एक सभा हुई तो उन्होंने प्रश्न पूछा, हाँ, या उनमें से एक साधु खड़ा हुआ और उस साधु ने कहा कि मैं तो अभी अभी आया हूँ बहुत अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करके, और लेकिन सारे तीर्थों का भ्रमण करने के बाद एक ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं साक्षात गदाधर कृष्ण पर्सनली अपने दिव्य रूप में निवास करते हैं। तो ये राजा को बहुत अच्छा लगा, राजा तो यही ढूंढ रहा था कृष्ण को कैसे मैं देखूं, प्राप्त करूं। अभी हम भी हमारे जीवन में अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे हैं, बचपन से लेकर हम कुछ डिग्रियां ढूंढ रहे हैं लाइफ में, क्या ढूंढ रहे हैं, डिग्री हासिल करनी है, ये बनना है। लेकिन यहाँ राजा के पास सब होने के बावजूद भी वो एक चीज क्या, एक चीज को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे इंद्रद्युम्न ने जब ये प्रश्न पूछा तो वहां के एक साधु ने कहा कि मैं अभी अभी एक स्थान से आया हूं जहां साक्षात कृष्ण वहां निवास करते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कौन सा वो स्थान है, वो कहते उड्र देश इति ख्याते वर्ष भारत संघ के दक्षिण्यो क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तमम, कहते कि दक्षिण में, हाँ, जो ओरिसा उड्र देश, हाँ, संस्कृत में स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि ओरिसा जो स्थान है जहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में कृष्ण निवास करते हैं, और वो नीलगिरि पर्वत के ऊपर एक वट वृक्ष है कई मील बड़ा, उठ वट वृक्ष के नीचे भगवान अपने नील माधव के रूप में निवास करते हैं। कौन से रूप में निवास करते हैं, नील माधव के रूप में निवास करते हैं। और उन्होंने कहा इतना ही नहीं, सारे देवता इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव ये सब आते हैं, और भगवान कृष्ण जो नील माधव है जिनका नील वर्ण है चतुर्भुज रूप है उनका स्तुतिया करते हैं और अलग अलग व्यंजन लाकर उनको ऑफर करते हैं। तो उन्होंने कहा यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतनाम दर्शनात् मुक्ति यो ददाति कृपानिधि, कि यहाँ ऐसे उस स्थान में नील माधव के रूप में कृष्ण निवास करते हैं, और वो क्या करते हैं, शंख चक्र गदा आदि को धारण किए हुए हैं, जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति, जंतु मीन्स क्या, जीव, जीवों को केवल अपने दर्शन देकर वो मुक्त करते हैं। तो ऐसे भगवान यो ददाति कृपा निधि, बहुत अधिक कृपामय है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का कृष्ण का वर्णन किया। राजा ने कहा उस साधु को कि आपको मैं क्या दू, क्या कामना है, धन आदि दू, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो साधु जाते हुए राजा को कहा कि हे राजा तुम क्या करो, केवल जीवन में दो चीजें करो, इसी प्रकार की लालसा कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रखो, और दूसरा क्या है, सदैव कृष्ण का स्मरण करो, और तीसरा है सदैव कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने कहा ऐसे भगवान नील माधव जो वहां निवास करते हैं उनका दर्शन प्राप्त करने मात्र से व्यक्ति योग्य होता है उनके धाम में वापस जाने के लिए। तो अभी राजा के हृदय में बहुत अधिक व्याकुलता जागृत हुई, लालसा जागृत हुई। तो राजा ने अपना जो मंत्री था उनको कहा कि कहाँ है वो स्थान, उसको ढूंढने के लिए भेजो। हाँ, तो अलग अलग चारों दिशाओं में चार प्रकार के लोग जाते हैं, और जो मंत्री था राजा का उसका भाई, उनका भाई था जिनका नाम था विद्यापति, क्या नाम था, लाउडले, हाँ, विद्यापति। विद्यापति, हाँ, बड़ा अच्छा ब्राह्मण था और बहुत डिवोशन, बहुत भक्ति उनके हृदय में थे। तो ऐसे विद्यापति को जब भेजा तो विद्यापति एक दिशा की ओर चलने लगे, और निकलते ही उनको इतना आनंद हो रहा था। विद्यापति कहते हैं अहो मे सफलम जन्म सुकल्पा शर्वरी चमे द्रक्षामि यद भगवतो मुख पद्मम अघापहम, कि कितना मैं फॉर्चुनेट हूं, कितना मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे, हाँ, आज इतनी अच्छी सुबह है कि मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकला हूं, और वो समय दूर नहीं है जिनको देखने मात्र से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जिनका एक समय में दर्शन करने मात्र से ऐसे भगवान को मैं साक्षात देखूंगा, ऐसे चक्रपाणी या चक्र धारण करने वाले कृष्ण को। तो ऐसे जो विद्यापति हैं वो निकल जाते हैं भ्रमण करने के लिए। फिर विद्यापति बहुत लंबा ट्रैवलिंग करते करते एक स्थान में आते हैं जहां वो देखते हैं कि एक एक शबर जाति जो आदिवासी जाति हैं उनका एक विलेज था। उस स्थान में लोग अलग अलग स्थानों में शाम के समय में बैठे थे और बैठकर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कृष्ण कथा आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब डिवोशनल एटमॉस्फेयर उन्होंने देखा वातावरण, तो विद्यापति बहुत प्रभावित हैं। तो ऐसे विद्यापति गया उनके पास और उन्होंने कहा अभी संध्या का समय हुआ है, मैं यहाँ निवास करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे इस गांव के जो मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उनका नाम क्या है, विश्ववसु, आप विश्ववसु का घर है, विश्ववसु के घर में जाकर निवास कीजिए। हाँ, तो ये विद्यापति जब गए तो विश्ववसु के घर में गए तो अतिथि के रूप में, तो विश्ववसु नहीं थे घर में, विश्ववसु बाहर चले गए थे और उनकी जो पुत्री है ललिता वो वहां थे, उन्होंने स्वागत किया, उनको जल आदि दिया, बैठने के लिए स्थान दिया। और थोड़े ही समय में ललिता के जो पिता है विश्ववसु वो आए और आकर उन्होंने उनका स्वागत आदि किया और परमिशन दिया रुकने के लिए। लेकिन विद्यापति ने देखा कि अरे ये जो विश्ववसु ये अभी संध्या के समय वापस आया है, जैसे उसने घर में प्रवेश किया है तो उसके शरीर से कस्तूरी मृग की जो सुगंध है कस्तूरी का, उससे भी अधिक सुगंध पूरे घर में फैल रही है और वो कई प्रकार के अद्भुत व्यंजन अपने साथ लेके आया है, फूड प्रसाद आदि। तो इनको थोड़ा डाउट हुआ कि ये आश्चर्य है। तो कुछ दिन वहां रहे तो ललिता उनकी सेवा करते थे विद्यापति के, हाँ, तो उनके साथ उन्होंने विवाह किया विद्यापति ने ललिता के साथ। और वो सोच रहे थे, वो एक एक, एक मिशन को लेके आए थे। क्या मिशन था? भगवान कृष्ण या जगन्नाथ को ढूंढना, कृष्ण को ढूंढना नील माधव के रूप में। तो उन्होंने अपनी पत्नी ललिता से पूछा, हे ललिता आप बताओ कि ये कृष्ण ये आपके जो पिता हैं रोज शाम दिन में और शाम के समय कहाँ जाते हैं, और वो जब आते हैं तो पूरा घर महक उठता है दिव्य सुगंध से, और फिर वो अपने साथ इतने अच्छे अच्छे व्यंजन लाते हैं। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि पिता ने मना किया था किसी को मत बताओ, और वो विश्ववसु जाते थे नील माधव कृष्ण जो साक्षात विराजमान है उनकी सेवा करने के लिए, देवतागण वहां आते थे उनकी सेवा स्तुति के लिए, अलग अलग भोगा या प्रसाद भोगा बनाकर भगवान को अर्पित करते थे, उन्हीं भोगा जो प्रसाद को लेकर विश्ववसु घर आते थे और भगवान की सेवा से उनका शरीर इतना दिव्य हो गया था कि उसे सुगंध निकल पड़ती थी भगवत सेवा से। तो ऐसे ललिता ने फाइनली उनके पति विद्यापति को कहा कि हाँ मेरे जो पिता हैं वो जाते हैं नील माधव की सेवा करने के लिए। जो नील माधव, तो इनको बहुत आनंद हुआ कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ यहाँ वो मुझे मिले हैं नील माधव। तो उन्होंने कहा, अपनी पत्नी को कहा कि तुम बताओ, अपने पिता से रिक्वेस्ट करो कि वो मुझे अपने साथ ले जाए एक दिन। तो फिर उनकी ललिता ने कहा, नहीं मेरे पिता ने मना किया है, लेकिन कहते मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। हाँ, तो ललिता पिताजी को कहती है कि आप मेरे पति को ले जाइए। पिताजी गुस्सा हो गए तो ललिता क्या करने लगे, क्रोकोडाइल टीयर्स, जो क्या कहते हैं उसको, आंसू है, आंसू बहाने लगी, रोने लगी। वो बड़ा अस्त्र है आंसू, क्या है, अस्त्र है हृदय को जीतने के लिए। तो पिता बड़े सॉफ्ट कोमल हृदय के, उन्होंने कहा नहीं नहीं मत रो, इतना मत रो, ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा एक शर्त है, उनको क्या करो, उनकी आंखें बांधी जाएगी, हाँ उनको मैं ले जाऊंगा फिर वापस ले आऊंगा। तो वैसे ही किया। तो विद्यापति के कुर्ते के जेब में जो ललिता है उसने जो मस्टर्ड सीड है उसके जो दाने वो डाल दिए, और बारिश के दिन थे। तो जब इनको आंखें बांधकर उस स्थान में ले जाया गया तो रास्ते में मस्टर्ड सीड्स को फेंकते जा रहे थे, और जब वहां पहुंचे विद्यापति, उन्होंने देखा, जब उनकी आंखों को खोला देखा कि इतने अद्भुत, इतना सौंदर्य की खान है कृष्ण, नील वर्ण है और चतुर्भुज रूप में है, शंख चक्र गदा धारण किया है, उनके शरीर से अंग कांति निकल रही है। विद्यापति देखकर स्तंभित हो गए, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे सौंदर्य को देखा नहीं था। और फिर उन्होंने वो जो विश्व वस्तु थे उन्होंने कहा मैं थोड़े से फूल फल आदि इकट्ठा करके आता हूँ, तब तक तुम इधर ही रहो। तो वहां जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि वहां नील माधव के सामने जो एक छोटा सा सरोवर था, हाँ, उसके वो उस सरोवर के किनारे एक वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा था। बैठते बैठते वो कौवा थोड़ा सा सो गया, सोकर नीचे गिर गया। कहाँ गिरा? सरोवर के जल में। जैसे वो सरोवर था रोहिणी कुंड, उसका स्पर्श हुआ तो वो कौवा चतुर्भुज रूप विष्णु के जो भक्त है दूत है उनका रूप धारण करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला गया। ये विद्यापति ने कहा कितना इजी है, एक मांस आदि खाने वाला कौवा, गंदगी खाने वाला कौवा भी भगवान के धाम बड़े सरलता से जा सकता है, तो मैं ये चांस क्यों छोड़ो? हाँ, हम जाना चाहते हैं भगवान के धाम? नहीं, भगवान के धाम नहीं जाना चाहते। जाना चाहते तो हम फर्स्ट होते, प्रायोरिटी रखते अपने जीवन में, प्राधान्यता भगवान के लिए, प्राथमिकता लाइफ में पहले पहुंचना है, पहले सर्व करना है, हर चीज में भगवान फर्स्ट। हाँ, अभी क्या है, हर चीज में भगवान लास्ट। इससे पता चलता है कि हम यही रहना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते भगवान वगैरह के पास, हम तो यही मौज करना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हाँ, काल रूपी सर्प, हाँ, जो चूहा है वो मस्ती करते रहता है, उसको पता नहीं सर्प उसको देख रहा है, काल रूपी सर्प, और कुछ ही क्षणों में सर्प क्या करता है, सारी एंजॉयमेंट को खत्म कर देता है, उसको निगल लेता है और उसी के घर में रहने लगता है। चूहा इतना दिन रात मेहनत करके क्या करता है, घर बनाता है, और सांप आके क्या करता है, उसको खाता भी है, उसके घर में रहता है। हमारी दशा वही है, हम यहाँ जा घर नहीं बनाना है भौतिक जगत में, उसी में फिक्स होना चाहते हैं। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरशाहम, हे अर्जुन मेरे पास नहीं आते ना वो लोग, ठीक है मैं उनके पास जाता हूँ। कैसे जाता हूँ? काल के रूप में, मृत्यु के रूप में, और उनकी सारी आसक्तियों को छीन लेता हूँ, जबरदस्ती छीन लेता हूँ, वो देना नहीं चाहते। हाँ, तो इस प्रकार से हम नहीं जाना चाहते भगवान के पास वापस। तो ऐसे विद्यापति ने सोचा कि मैं तो मुझे जाना है, तो तुरंत वो पेड़ के ऊपर दौड़ पड़े, टहनी के ऊपर चढ़े, शाखा के ऊपर, और जंप लगाने वाले थे वहां से, तो उस समय आकाशवाणी, अरे अरे विद्यापति तुम एक मिशन, एक सेवा को लेकर आए हो, राजा इंद्रदुम्न के लिए तुम यहाँ आए हो, तुम्हें वापस जाना होगा, उनको ये न्यूज दो कि मैं यहाँ हूं। हाँ, तो फिर राजा, हाँ, ये जो विद्यापति सुनता है तो विद्यापति फिर वापस, हाँ, जाने लगता है। फिर विद्यापति सोचता है कि नहीं नहीं मुझे तो राजा को बताना है न्यूज़। तो विद्यापति भगवान की सेवा आदि करता है, उनका गार्लैंड लेता है, प्रसाद स्वीकार करता है, और फिर थोड़े ही दिनों में, हाँ, भगवान क्या हो जाते हैं, उस स्थान से अप्रकट हो जाते हैं नील माधव के रूप में। तो ये विद्यापति वहां से दौड़ते हुए अवंती आया, अवंती जो उज्जैन है, राजा इंद्रद्युम्न वेट कर रहा था कि अरे विद्यापति आए नहीं वापस। विद्यापति ने गार्लैंड दिया, राजा ने धारण किया, प्रणाम आदि किया, और उन्होंने कहा बताओ बताओ कृष्ण कहाँ निवास कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने साक्षात देखा है, आप चलिए। राजा इंद्रद्युम्न ने एक भी नई चीज सोची, दूसरे दिन अपना पूरा परिवार आदि को लेकर जगन्नाथपुरी की ओर रवाना होने लगे, उस स्थान की ओर नील माधव के दर्शन के लिए। लेकिन जब प्रजा ने देखा कि हमारे राजा जा रहे हैं, तो सारी प्रजा अपने अपने बैग भर के अपना अपना सामान लेकर घर छोड़कर राजा के पीछे, तो सारा अवंती उज्जैन खाली हो गया, हजारों लोग निकले किसको देखने के लिए? कृष्ण को देखने के लिए। जैसे आप महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल है, जो अभी ये शयन एकादशी थी ना, उस दिन महाराष्ट्र के हर गांव में से लोग वॉक करते हैं, चलते हैं एक महीने के लिए। किसके लिए क्यों चलते हैं? वहां द्वारकाधीश कृष्ण विट्ठल के रूप में है, उनको केवल देखने के लिए, केवल उनका दर्शन करने के लिए हजारों हजारों में भी 10 या 15 लाख लोग महाराष्ट्र में वॉक करते हैं एक साथ, डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में से, और फिर एक जगह मिलते हैं। कहां मिलते हैं? वहां एक आध्यात्मिक स्थान है पंडरपुर, जहां भगवान विट्ठल को देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए। तो वैसे ही राजा इंद्रद्युम्न निकले, और वो जब पहुंचे उस स्थान में महानदी के, तो ओडिशा के राजा ने कहा कि आप आने से पहले एक बड़ा तूफान आदि आया और भगवान की ये योजना थी, भगवान नील माधव उस स्थान से अप्रकट हुए हैं और भगवान ने अपने जो भक्त थे विश्व वसु उनको कहा कि मैंने तुमसे तो बहुत सरल सेवा स्वीकार की है, लेकिन मैं अभी ऐश्वर्य सेवा, ऐश्वर्यशाली सेवा को चाहता हूँ, इसलिए मैं राजा इंद्रद्युम्न से सेवा लेना चाहता हूँ। तो विश्व वसु तो फल फूल अर्पित करते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अभी मैं क्या सेवा लेना चाहता हूँ, ऐश्वर्यशाली। तो फिर हाँ इंद्रद्युम्न जब गए वहां से आगे महानदी के किनारे से आगे गए जगन्नाथपुरी की ओर, वहां जाकर उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए, उस यज्ञ से नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि मैं क्या होऊंगा, कल समंदर में ऊड़ या लकड़ के रूप में आऊंगा बहते हुए, उससे क्या करो, उस लकड़ी से आप मेरे विग्रह बनाओ, मूर्तियों को बनाओ, मेरा ये विशेष रूप है। तो दूसरे दिन राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि भगवान सुबह समंदर के किनारे जो लकड़ बह के आया था जिसके ऊपर शंख चक्र गदा के चिन्ह थे और उसको खींचने लगे हाथी घोड़े, वो खींचा नहीं जा रहा था। भगवान ने कहा मेरा जो पुराना भक्त है दयितापति जिनका नाम है विश्व वसु, उनको ले आओ, सोने का रथ हो जिसके ऊपर डालो और फिर उससे विग्रह बनाओ। तो राजा ने वैसे किया, विश्व वसु को लाया और उस जो बड़ा सा उड़न लकड़ का वो था उसको लाया और फिर अलग अलग जो शिल्पकार हैं, कारपेंटर हैं, उनको बनाया, बुलाया गया कि कौन इससे भगवान के विग्रहों को बनाएगा, मूर्तियों को बनाएगा। तो अलग अलग आते थे और वो अपने जो अवजार हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको यूज करते थे तो टूट जाते थे। फिर स्वयं ही भगवान महाराणा विश्वकर्मा के रूप में आते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में, और कहते कि राजा मैं विग्रह बना सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा तो बूढ़ा व्यक्ति है क्या बनाएगा, लेकिन चलो ट्राई, जस्ट ट्राई, ट्राई करते हैं। तो फिर उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि लेकिन मुझे 15 दिन चाहिए कि आप क्या करो, डोर्स बंद करूँगा, एक रूम के अंदर भगवान के विग्रहों को बनाऊंगा, मूर्तियों को बनाऊंगा, हाँ मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो इंद्रद्युम्न ने कहा ठीक है। तो फिर वो जो शिल्पकार था या कारपेंटर महाराणा, वो बनाने लगे विग्रह को। तो शुरुआत के 7-5-6 दिन आवाज आ रही थी, टक 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 आवाज आने लगी, फिर उसके बाद आवाज आना बंद हो गए। तो राजा इंद्रद्युम्न को चिंता लगी कि अरे वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर विग्रहों का निर्माण कर रहा है, उसको ना जल दे रहे हैं ना फूड दे रहे हैं, वो शायद मर गया होगा। तो उनकी जो पत्नी थी गुंडीचा, उन्होंने कहा कि हे राजा आप जल्दी इन दरवाजों को खोलो, वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया होगा, हमें वो सहायता करनी चाहिए। तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर उन्होंने क्या किया, राजा इंद्रद्युम्न ने उस रूम के डोर्स खोले, दरवाजे खोले, तो उनको क्या नजर आए, जगन्नाथ स्वामी के, बलभद्र देव के, सुभद्रा महारानी के। तो ऐसे सही, ऐसे भगवान। तो इंद्रद्युम्न ने देखा अरे क्या है, मैंने भगवान के प्रति अपराध किया है, ना उनके हाथ है पूर्ण, ना उनके पाँव है, ना उनके अलग अलग अंग है। तो इंद्रद्युम्न राजा अपने पत्नी गुंडीचा को डांटने लगे कि तुम्हारे कारण मैंने क्या किया है, दरवाजा खोला है और देखो मैं कितना अपराधी हूँ, दुष्कर्मी हूँ कि मैंने ये खोला तो भगवान के विग्रह पूर्ण नहीं हुए हैं, ऐसे ही रूप उनको है। तो बहुत चिंता करने लगे। उन्होंने फिर उपोषण शुरू किया, जल आदि का त्याग किया, अपने वस्त्र त्यागे और आमरण उपोषण के लिए बैठ गए, अपने आप को क्या करने के लिए, प्रायश्चित कर देने के लिए अनुताप करने लगे, रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का क्या लाभ, मैंने कृष्ण के प्रति इतना बड़ा अपराध किया है, उनके विग्रहों को पूर्ण नहीं होने दिया। तो तब उस समय नारद आते हैं वहां और नारद कहते हैं, नारद ने जब देखा जगन्नाथ, ये तीन विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आधे आधे हैं सारे, ना उनके हाथ पाँव कान नाक कुछ भी नहीं है। तो नारद ने कहा कि हे इंद्रद्युम्न ऐसे नहीं है, ये अपूर्ण नहीं है, ये क्या है, पूर्ण है। कृष्ण अपूर्ण कैसे हो सकते हैं, ओम पूर्णमिदं हाँ पूर्णमधा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण क्या है? सदैव पूर्ण है। उनसे निकाल लो तभी भी वो पूर्ण बने रहते हैं। मैं जब ये श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा उसकी याद आती है, कंप्यूटर्स की। हाँ, उसमें अब डाटा ट्रांसफर करो तो डाटा क्या होता है, बना रहता है कि नहीं? अब ट्रांसफर करते तो वैसे वैसे बना रहता है जो भी फाइल है दूसरे कंप्यूटर में। तो भगवान से तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ कृष्ण क्या है, सदैव पूर्ण है। तो ऐसे जब नारद ने देखा, नारद ने कहा कि हे राजा इंद्रदुम्न, तुम सबसे अधिक फॉर्चुनेट सोल हो, भाग्यशाली जीव हो, कि भगवान कृष्ण ने अपना ऐसा रहस्यमय रूप केवल आपके लिए प्रस्तुत किया है, आपके लिए प्रकट किया है। हाँ, ऐसे रूप को देखना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो इस जगत के मनुष्यों के लिए कितना दुर्लभ है। तो फिर नारद ने कहा ये अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है, और इस रूप का दर्शन किसने किया है? मैंने स्वयं किया है। तो इंद्रदुम्न थोड़ा सा खुश है, उन्होंने कहा बताओ बताओ कहाँ कहाँ आपने देखा है, कहाँ दर्शन किया है? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहाँ देखा है इसको, द्वारका में। कहाँ देखा है? कहाँ? लाउडली और जोर से। हाँ, धाम का नाम लेना चाहिए, द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, वृंदावन, मथुरा, हाँ अयोध्या। तो ऐसे उन्होंने कहा मैंने द्वारका में देखा है। तो ये सुनने के लिए उत्साहित हो गए। तो फिर उन्होंने कहा बताइए, तो एक बार जो नारद है वो गए द्वारका में, और नारद इसलिए गए थे कृष्ण को स्मरण दिलाने के लिए। किसका स्मरण दिलाने के लिए गए थे? ब्रजवासियों का। नारद जब वहां गए तो नारद इस भावना से गए कि मैं द्वारका में स्थापित करूंगा कि वास्तव में इस जगत में जो टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, सर्वोच्च भक्त कोई है तो वो वृंदावन के निवासी हैं, ब्रजवासी हैं। उनसे उत्कृष्ट, उनसे अधिक समर्पित, उससे अधिक डेडिकेशन या उनसे अधिक अफेक्शनेट कृष्ण के लिए कोई और डिवोटी नहीं है इस संसार में। उनके प्रेम की, उनकी सेवा की, उनकी शरणागति की तुलना संसार में किसी और से की नहीं जा सकती, जो ब्रजवासियों के पास कृष्ण के लिए उनके हृदय में जो प्रेम है। तो ये गए जानबूझ के ही। वहाँ जो 16,108 रानियाँ हैं उनमें से जो प्रमुख हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदे आदि, उनके पास गए, विशेष रूप से सत्यभामा और रुक्मिणी के पास। उन्होंने कहा आप कितनी भाग्यशाली हो, आप सदैव कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। हाँ, तो आपसे अधिक भाग्यशाली इस जगत में कोई नहीं है, आप सबसे अधिक उन्नत हैं, सबसे अधिक कृष्ण के प्रिय हैं। तो जैसे ये गुणगान कर रहे थे, नारद ने उन सारे रानियों को दंडवत प्रणाम किया, कहा आप कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, आप भगवान के बहुत करीब हैं। तो नारद ने प्रणाम किया तो ये बेचारी रानियां रोने लगी। नारद को सारा संसार क्या करता है? प्रणाम करता है। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे। नारद मुनि सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं अपने वीणा के साथ। तो ऐसे नारद मुनि का प्रणाम को स्वीकार करते हुए रानियां बहुत डर गई, दुखी हो गई, रोने लगी जोर जोर से। नारद को कहने लगी ये दोनों कि हम जब से हमने शादी हुआ है, जब से हमारा विवाह हुआ है, तब से हमें सुख, सुख नाम की चीज क्या हो गई, हमारे जीवन से निकल गई। तो नारद ने कहा ऐसे कैसे संभव है, आपका तो विवाह साक्षात किससे हुआ है? कृष्ण, और वो तो आनंद घन मूर्ति है। आनंद, आनंद क्या है उनमें? ठूस ठूस के भरा है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आता है तो दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन इन रानियों ने कहा क्या बताएं, हमारा दुख का जो ये कथा है, आपने हृदय का दरवाजे खोले। किसने खोले दरवाजे? किसने खोले दुख के दरवाजे? हाँ, रानियों ने। किसके पास? नारद के पास। इसका मतलब आप यहाँ हैं, हाँ आप द्वारका में मत जाइए अभी, या फिर आप घर मत जाइए, थोड़ी देर और सहन कीजिए। हाँ, टाइम तो खत्म हो गया है, 6:40। मैं और 10 मिनट बोलता हूँ, जस्ट कंक्लूड करता हूँ। तो जब नारद के पास ये रानियाँ रोने लगी और उन्होंने कहा क्या बताए कि इतना अधिक दुख है, हम इनकी इतनी सारी सेवा करते हैं, पर्सनली सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे वो संतुष्ट नहीं है। कृष्ण रुक्मिणी कहने लगे कि वो मेरे रूम में सोते हैं कृष्ण भगवान, तो भी रात्रि के समय में मेरी बेनी खींचते और चिल्लाते रहते हैं, ओ राधा ओ ललिता आप कहाँ हो, हे मदर यशोदा मुझे भूख लगी है, मक्खन कहाँ है। तो अभी ये सोचते कि हम इतनी दिन रात सेवा कर रहे हैं, लेकिन किसका स्मरण हो रहा है उनको, ब्रजवासियों का। वहां वो चिल्लाते हैं, हे हे मेरे सुबल, हे मधुमंगल, हे कोकिल, हे ब्रंग, हे श्रीदाम आप कहाँ हो, चलो चलो टाइम हो गया है। कहाँ जाने का टाइम हो गया है, गौओं को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए। तो ऐसे कृष्ण इवन द्वारका में होने के बाद भी उनका चित्त, उनका हृदय, उनका मन उन्होंने कहाँ बेच दिया था, ब्रजवासियों के लिए बेच दिया था। तो ऐसी हर ये जो रानियां हैं बोलते जा रही हैं, लंबा बहुत लंबा कथा है, ऐसी बहुत सारी चीजें वर्णन आता है। तो ये सब बोलती जा रही थी, बोलती जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना क्या क्या चीज है इन ब्रजवासियों के पास। तो जैसे ही फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको किसको पूछना होगा, रोहिणी को। किसको, क्योंकि रोहिणी वृंदावन में निवास कर रही थी जब कृष्ण और बलराम वहां थे। कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ा जब 11 साल 10 महीने 10 साल और कुछ महीने के थे, तब अक्रूर के साथ वो मथुरा आए थे। इस 11 साल के समय में रोहिणी ने कृष्ण की हर चीज को देखा था। इवन कृष्ण द्वारका में थे जब उनको भूख लगती थी, तो उनको कोई ऐसा अपना नजदीक का महसूस नहीं होता था जिसको आप ओपनली बोल सकते हो, डांट सकते हो, छीन सकते हो। इवन देवकी या वसुदेव आदि के साथ भी उनका ऐसा इतना फ्रेंडली संबंध नहीं था, लेकिन उनको भूख लगती थी द्वारका में कृष्ण को, तो किससे मांगते थे, रोहिणी से, क्योंकि रोहिणी जानती है ब्रज के मूड को, ब्रज की भावना को। तो ऐसे भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के प्रति बहुत अधिक आसक्त थे। तो नारद ने कहा कि आप सब क्या करो, यही प्रश्न कि ये क्यों ऐसा है, ये किसको पूछो, रोहिणी को पूछो। तो ये जो रुक्मिणी और सत्यभामा रोहिणी को बुलाती है, रोहिणी माता जो बलराम की मदर है, और उनको एक वंडरफुल बड़ा सा आसन देती है, और इतना बड़ा हॉल होता है जिसमें कितनी रानियां बैठी है लेक्चर के लिए, 16,108, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बच्चों को एंट्री नहीं था उसमें, क्लास में क्या है बच्चे आदि को एंट्री नहीं, और वो ओनली माता जी का क्लास था। आप सोचो, माता जी बोल रही थी और सारे जो माता है वो क्या कर रहे थे, लेक्चर को सुन रही थी। और जैसे रुक्मिणी को उन्होंने ऊपर का स्थान दिया, सारी रानियां बैठ गई इसी उत्सुकता से कि क्यों ऐसा है। उन्होंने कहा, इन रानियों ने कहा कि हम इतना अधिक उनकी सेवा में लगे हैं, और हम ये नहीं जानते कि ब्रजवासियों के पास क्या ऐसी चीज है। ब्रजवासियों के पास ना प्रॉपरली आभूषण है, वो तो बेचारे अपने फल फूल लगाते रहते हैं, इतना अच्छा श्रृंगार आदि नहीं कर पाते, उनके पास इतना अच्छा अधिक धन या ऐश्वर्य, इतने वैरायटीज ऑफ फूड, बड़े बड़े महल, सुंदर सुंदर वस्त्र आदि नहीं है, कि फिर भी क्यों उनसे आकृष्ट है। रुक्मिणी कहती क्या जरूर वो कुछ मंत्र जानते होंगे, उस मंत्र का उच्चारण करके कृष्ण क्या हो गए हैं, उनके वश में हो गए हैं। और वास्तव में ब्रजवासी एक ही मंत्र को जानते हैं, और वो क्या है, लाउडली कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब जब सुना रोहिणी ने, तो रोहिणी की आंखों में आंसू आने लगे, वो रोने लगे, ब्रज का स्मरण हो आया, और उन्होंने कहना शुरू किया वृंदावन की महिमा को। उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन के कार्यकलापों का वर्णन करती हूँ कि क्यों कृष्ण इतने आसक्त हैं ब्रजवासियों के प्रति। वहाँ ग्वाल बाल, गोपिकाएं, नंद महाराज, यशोदा, वहाँ की गायें, सबसे कृष्ण के हृदय में प्रगाढ़ प्रेम है, तो ये क्यों है। उन्होंने कहा आप सब तो इस रानियां सब सेवाएं कर रही हो, लेकिन आप क्या हो, आपने पूर्ण रूपेण अपना जो हृदय है वो कृष्ण को नहीं प्रदान किया है। आपने क्या किया है, मैं भी आपके 10 बच्चे और एक एक 10 पुत्र हैं और एक पुत्री है, हर रानी के 11 पुत्र आदित हैं। उन्होंने आपने आपका हृदय को टुकड़े टुकड़े करके हर एक बच्चे को बांटा हुआ है, और बचा कुचा किसके लिए है, कृष्ण के लिए है। हाँ, तो वो प्रीति वो प्रेम आपके पास नहीं है, वो सेवा की भावना उस प्रकार का समर्पण आपके पास नहीं है। कृष्ण तो गीता में डिक्लेयर करते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज। कृष्ण चाहते हैं कि ये जो हमारा हृदय है ये शरणागति है, केवल कृष्ण के लिए हम एक में प्रदान करें। मैं भी हमारे ड्यूटीज हो सकते हैं, पति धर्म है, पत्नी धर्म है, पुत्र धर्म है, फादर का धर्म है, माता का धर्म है, ये सारे ड्यूटीज हैं। तो भगवान कहते हैं इन सारे धर्मों को त्यागो, हाँ, लेकिन मेरी शरणागत हो जाओ, ये धर्मों को आप अपने आप निभाओगे सरलता से। हाँ, ब्रजवासियों के पास भी यही चीजें थी, उनके पास भी पत्नी है, बच्चे है, घर है, बिजनेस है, सब है, लेकिन उनका हृदय उन सब चीजों के लिए नहीं है। हृदय किसके लिए है, कृष्ण के लिए। उनके जीवन का जो सेंटर है वो कृष्ण है। तो वास्तव में वृंदावन वासी बनना या ब्रजवासी बनने का मतलब है कि अपने लाइफ में कृष्ण को क्या बनाना, केंद्र बिंदु बनाना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कृष्ण को सेंटर बनाया है वो व्यक्ति ब्रजवासी है, वो व्यक्ति वृंदावन वासी है, वो व्यक्ति चाहे जहां मर्जी रहे वो धामवासी है, हम भगवान का निकट पार्षद है, अंतरंग सखा है। इस प्रकार से रोहिणी ने बहुत कुछ चीजें कही, और रोहिणी ने कहा मैं बोलने जा रही हूँ ये ब्रज लीला कहानी, इसका एक आकर्षण है कि जहां भी कृष्ण होंगे वो इस स्थान में आए बिना नहीं रह सकते। कृष्ण को खींचने के लिए, हाँ, कृष्ण कहाँ से कैसे आकृष्ट होते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हाँ, भगवान कहते कि जहां जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं नारद, उस स्थान में मैं जाकर निवास करता हूं, बैठता हूं। तो हम अब हम कृष्ण कथा में हो या ना हो, लेकिन कृष्ण क्या होते हैं, अपनी कथा को सुनने के लिए जरूर होते हैं, तत्पर रहते हैं। तो नारद, इसने रुक्मिणी ने कहा कि किसी एक को दरवाजे में खड़ा रहना होगा। अभी सब बड़े बड़े बैठे हैं तो देखते कि सबसे छोटा कौन है ना, ढूंढते कि नहीं, छोटे को काम में लगा देते हैं, बड़े सब गप्पे मारते रहते हैं, प्रजल्पा करते हैं। हाँ, तो उन्होंने देखा कौन छोटी है यहाँ, कौन छोटी थी वहां, कौन थी, जोर से आवाज और, सुभद्रा महारानी, सुभद्रा, सुभद्रा देवी वहां थी। उन्होंने कहा सुभद्रा तुम जाओ जाओ वहां खड़ी रहो, दरवाजे में खड़े रहो। हाँ, सुभद्रा देवी ने कहा अरे मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा, लेक्चर को कैसे छोड़ सकते, ब्रज लीला कहानी, रोहिणी के द्वारा आंखों देखा हाल। हाँ, रोहिणी ने अपने 11 साल में क्या किया था, लाइव देखा था कृष्ण के हर एक्टिविटीज को, उसको वर्णन करने जाए, जिसने देखा है वो वर्णन करे तो आप सोच सकते हैं कितना अद्भुत है। हाँ, तो वो सुभद्रा देवी दरवाजे में गई, लंबा सा दरवाजा था, वो गई और कैसे ऐसी खड़ी नहीं रही। हाँ, सेवा दिया तो पूरा करना चाहिए। हाँ, कोई अंदर ना आ जाए, दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पाँव इधर एक पाँव इधर, छोटे बच्चे होते ना ब्लॉक करते हैं, दरवाजा ब्लॉक कर दिया। अभी सुभद्रा देवी ने कहा कैसे कोई अंदर आता है देखता हूँ, लेकिन रोहिणी जानती थी कि ये दो लोग आए बिना नहीं रह सकते। कृष्ण को, हाँ, उनके भक्तों का जब गुणगान होता है, क्योंकि भक्तों के गुणगान में भगवान का गुणगान क्या है, सम्मिलित है, निहित है। तो कृष्ण जहां मर्जी हो अपने सारे ड्यूटीज को फेंक देते हैं और दौड़ते हैं उस स्थान में। तो ऐसे कृष्ण उस समय उद्धव उग्रसेन आदि के साथ सुधर्मा सभा में थे। आप देखो कृष्णा कितने विनम्र है, कितने सरेंडर है। मथुरा के कंस को मार दिया, खुद राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने भक्त उग्रसेन को क्या बनाया, राजा, और उनका सर्वेंट बन के रहे। द्वारका में भी कैसे रहे, वो सर्वेंट बन के उग्रसेन का हर समय। उग्रसेन ऊंचे आसन में बैठते थे, कृष्ण नीचे। मैं भी उनको द्वारकाधीश कहा जाता है, लेकिन सदैव किसके अंडर थे, डिवोटी के अंडर, भक्तों के, हाँ, भक्तों के अंडर। तो ऐसे कृष्ण वहां थे, उद्धव से चर्चा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत प्रकाश ऑन हो गया, बटन ऑन हो गया, क्या लेक्चर शुरू हो गया है, क्या गया है वहां, रोहिणी बोलने जा रही है, ब्रज का गुणगान करने जा रही है, भागो यहां से, या कहां से धर्म सभा में ये सब इनके सब ऑफिशियल ड्यूटीज कर रहा हूं, भागो ऑन टाइम पहुंचना चाहिए। तो शुरू होता है कि नहीं होता, शुरू हो ही गया था थोड़ा सा। हाँ, कृष्ण क्या हुए, बलराम के साथ भागते हो गए, भागते हुए आए तो देखा कि धीरे धीरे वॉक करना चाहिए, तो भगवान आपने धीरे धीरे कदम डालते हुए देखा, दरवाजा तो क्या किया है, ब्लॉक, किसने ब्लॉक किया है, सुभद्रा देवी। आप थोड़ा इमेजिन करिए, अंदर लेक्चर बहुत बड़ा हॉल है जहाँ सुभद्रा देवी ने रोड दरवाजा बंद कर दिया, कृष्ण आए, सुभद्रा देवी की एक ओर खड़े हो गए, और उनकी गति धीरे हो गई, जैसे जैसे कृष्ण कथा ब्रज के बारे में सुनने लगे, ब्रज का स्मरण उनको हो आया, उनका हृदय भारी हो गया। कई बार बहुत सुख की अनुभूति होती है तो हृदय भारी हो जाता है, पता है कि नहीं, दुख की अनुभूति होती है तो भी हृदय भारी हो जाता है, लेकिन अलग अलग इमोशंस है, उसके अलग अलग रिजल्ट है। तो ऐसे है, ब्रज का स्मरण उनको हो आया, रोहिणी देवी सुना रहे थे, तो कृष्ण की गति धीरे हो गई, धीरे गति से ये दोनों कृष्ण और बलराम जाकर कहां पहुंचे, सुभद्रा के पास, और ये तीनों इतने निमग्न हो गए हैं ब्रज लीला कहानी, ब्रज का वर्णन, वृंदावन वासी जिनके जो ग्वाल सखा है, गोपिकाज है, या नंद महाराज है, यशोदा है, उनके बारे में श्रवण करने में भगवान इतने निमग्न हो गए, उसमें डूब गए, और उसमें इतने अधिक डूब गए कि उनका जो प्रेम जिसको कहते हैं महाभाव प्रकट हो गया, और भगवान के जो ये है अंग है, उनके जो हाथ हैं, पांव हैं, अंग क्या हो गए, शरीर में चले गए। तो ये बलराम इस तरफ थे, बलराम जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा बीच में थे, तो इन दोनों के तो हाथ ऐसे रह गए, लेकिन सुभद्रा के हाथ कैसे थे, ऐसे थे, ऐसे करिए, सब करिए, हाँ, तो जब ऐसे हाथ थे तो दोनों इनके पास थे, तो उनके हाथ कहाँ चले गए, अंदर, इसलिए सुभद्रा देवी के हाथ आप नहीं देखते, सुभद्रा देवी के विग्रह में हाथ नहीं है, बलराम और किसके हैं, कृष्ण के हैं। तो इस रूप को जब प्रकट हुआ, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ अंदर चले गए, इतना प्रेम ब्रजवासियों के प्रति। हाँ, हम भी जब आनंद अनुभव करते तो ऐसे सिकुड़ लेते ना अंग को, हाँ, तो वैसे हो गया, दिव्य भाव का प्रदर्शन। और उस समय इसी मुद्रा में, इसी रूप में भगवान खड़े थे सुभद्रा बलराम के साथ, और उनकी आंखें, प्रेम जब बढ़ता है, आनंद जब बढ़ता है, तो आंखें क्या होती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी इनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई, और एक करुणा या अफेक्शन, कंपैशन या दया का एक स्वभाव है। तो फिर ये ऐसे खड़े ही थे, मग्न हो गए थे, उसी समय एक पर्सनालिटी वहां चलते हुए आए, वो कौन थे, नारद मुनि की, जोर से बोले नारद मुनि की। तो नारद मुनि वहां आए, और नारद मुनि चिल्लाने लगे, बोलने लगे, मैंने देखा, क्या बोला उन्होंने, अभी ये बिल्कुल तीनों निमग्न थे, लेकिन नारदा ने कहा मैंने देखा, तो भगवान कृष्ण थोड़े अपने नेचुरल क्या कहते हैं इसको, स्थिति में आ गए, स्वाभाविक स्थिति में। तो वहां फिर भगवान ने देखा, अरे कौन कह रहा है मैंने देखा, क्योंकि किसी ने नहीं देखा ये रूप। तो जब नारद के द्वारा ये देखा गया, भगवान लज्जित हो गए, और भगवान अंदर से तो खुश भी हो रहे थे। फिर नारद ने इस रूप को देखा, तो उन्होंने कहा, नारदा मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूं, क्योंकि वास्तव में सारी घटना के पीछे कौन हो, तुम हो, तुम उन रानियों के पास नहीं जाते तो मुझे ब्रज का स्मरण नहीं हो आता, और ब्रज के स्मरण का प्रभाव क्या हो गया, मेरा ये रूप। तो उन्होंने कहा, नारद बताओ क्या चाहते हो तुम। तो नारद ने कई चीजें मांगी, उसमें से नारद ने कहा कि हे भगवान, आपका ये जो अप्रतिम रूप है जिसके साथ आप अपनी बहन सुभद्रा के साथ हो, बलदेव के साथ हो, इस विग्रह के रूप में आप क्या कर कीजिए, पृथ्वी में निवास कीजिए। और दूसरी चीज मांगी कि आपके इस दिव्य रूप का हर एक को दर्शन दीजिए, जंतुनाम दर्शनात् मुक्ति। आप क्या कीजिए, दर्शन देकर सारे जगत के जीवों को मुक्त कीजिए। हाँ, तो ऐसी चीजें नारद ने मांगी और भगवान ने कहा ततास्तु। क्या कहा? हाँ, तो भगवान खुश हो गए, नारद के डिजायर्स को क्यों नहीं पूर्ति करेंगे। हाँ, नारद ने इतनी अच्छी सेवा की थी, किसका स्मरण दिलाया था? भक्तों का, ब्रज का स्मरण दिया था। वास्तव में वही व्यक्ति हमारा असली हितेशी है, वही व्यक्ति हमारा असली मित्र है, बंधु है, सखा है, माता पिता है, भाई है, बहन है, जो हमें किसका स्मरण दे? कृष्ण का। और जो हमें कृष्ण के स्मरण, कृष्ण का विस्मरण कराते हैं, वो में भी हमारे संबंधी हो सकते हैं, लेकिन वो असली संबंधी नहीं है। वो सारे तो हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष की वंशज है, वंशज। प्रहलाद जैसे भक्त हमें कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का ये जो रूप है प्रकट होता है। कहाँ प्रकट हुआ था? जगन्नाथपुरी में। और ये नारद के द्वारा जब इंद्रद्युम्न महाराज ने सुना तो इंद्रद्युम्न बहुत गदगद हो गए। इंद्रद्युम्न ने बहुत विशाल मंदिर का निर्माण किया और फिर और भी विस्तार से वो चर्चा है। लेकिन फिर फाइनली भगवान से उन्होंने मांगा कि हे जगन्नाथ देव, भगवान जगन्नाथ ने मांगा कि आप कुछ मांगो। तो इंद्रद्युम्न ने मांगा कि मुझे केवल 3 चीजें मैं मांगता हूँ आपसे। वो पहली चीज क्या है कि इतना विशाल मंदिर है और आप इतने महान हैं सारे जगत को दर्शन देने के लिए, तो मुझे आप पहला बार ये दे दो कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। हम सब तो विवाह का मतलब क्या है? पुत्रार्थे क्रियते भार्या। भार्या मतलब पत्नी का उद्देश्य है कि पुत्र प्राप्ति। तो लेकिन यहाँ इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मेरा पुत्र आदि होगा तो वो आपका जो धन है, आपका इतना विशाल मंदिर है, इसका मिसयूज करना शुरू करेगा। उससे अपने इंद्रिय तृप्ति में सारा जो धन आदि है उसका इस्तेमाल करेगा, तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो भगवान इस एटीट्यूड से बहुत खुश हो गए। हाँ, भगवान उनके पुत्र बनते हैं मुंडेचा के, वो जाते हैं रथ यात्रा के समय मुंडेचा टेम्पल। तो ऐसे पहली चीज तो ये, और दूसरी कहा कि मैं चाहता हूं कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कभी सूखे ना, मतलब हमेशा गीली रहे। आप क्या करो, खाते रहो, क्या करते रहो, क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो भक्त कैसे खा पाएंगे, बेचारे भूखे मर जाएंगे, प्रसाद कैसे बनेगा। भगवान खाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? और जोर से प्रसाद। तो जब भगवान नहीं कहेंगे तो प्रसाद बनेगा नहीं, फिर भक्त कोई क्लास में नहीं होगा, है ना, भक्ति नहीं करेगा। तो इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि आप हमेशा 24 घंटे खाते रहो, आपकी उंगली हमेशा गीली रहे। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ देव एक ही समय में इतना भोजन करते कि 25,000 लोग एक समय खा सकते हैं। कितना खाते एक समय? हजारों हजारों मटके बड़े बड़े उनको भोग लगाए जाते, कई क्विंटल राइस, सब्जी, स्वीट्स, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाटर, जूसेस, उनको पीते रहते, खाते रहते। किसकी, किसके वचन का पालन करने के लिए? राजा इंद्रद्युम्न। और तीसरी चीज उन्होंने मांगी कि हे जगन्नाथ देव, आप क्या करो, आपके जो मंदिर है, देवालय है, वो केवल 1 या 2 घंटे के लिए बंद हो जाए या 3 घंटे के लिए, पूरे दिन रात आप क्या करो, जगत को दर्शन दो। तो इसलिए जगन्नाथ टेम्पल, भगवान रात्रि को 2-3 बजे सोते हैं, आप रात्रि में 1-2-3 बजे जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। हाँ, तो इसलिए भगवान अपने भक्त के लिए प्रकट होते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्यों प्रकट होते हैं भगवान, क्या बोला था मैंने एक शब्द, भक्त सुख देते। क्या है? हाँ, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ देव हैं, बहुत रहस्यमय विग्रह हैं, हाँ वो उनके कार्यकलाप बहुत अधिक विस्तारमय है, जिनके गुणों का गान करना असंभव है, लेकिन हम प्रयास करते हैं अपनी शुद्धि के लिए। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया जा सकता है, सारे शास्त्र उनके दिव्य कार्यकलापों से बड़े हैं, इसलिए भगवान जगन्नाथ को एक विशेष नाम है, उनको कहते भक्तवत्सल देव, भक्तवत्सल भगवान, या फिर भक्त प्रेमी भगवान। बाकी विग्रहों को मैं भी भक्तों से इतना अधिक प्रेम है या नहीं है, लेकिन जगन्नाथ को अपने भक्तों से क्या है, सर्वाधिक प्रेम है। तो बहुत फॉर्चुनेट हो कि भगवान जगन्नाथ यहाँ आए हैं स्वयं ही दर्शन देने के लिए, हमारे अंदर हम जाने की इच्छा नहीं है भगवान को देखने की। तो भगवान बहुत दयालु है, इसलिए तो रथ यात्रा के रूप का बहाना बनाते हैं और वो हमारे पास आते हैं। आपको टेम्पल जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन टेम्पल आपके घर में आ जाता है, आता है कि नहीं आता? हाँ, तो वही है भगवान। आपको भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं है, तो भगवान इतने दयालु है कि वो स्वयं आते हैं आपके पास। अरे ठीक है, देखो मुझे, थोड़ा दर्शन करो मेरा। भौतिक जगत में भी हम चाहते हैं ना, मैं मुझे देखे, सब लोग क्या करें, मुझे देखे। लेकिन उनको देख के क्या होगा, नरक गति होगी। लेकिन जगन्नाथ को देखकर क्या होगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ जगत में हम चाहोगे। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ अपनी कृपा देते हैं दो प्रकार से, एक तो प्रसादम और दूसरा क्या है, दर्शनम। क्या है दो चीजें, प्रसाद दर्शनम। कितना सरल है, हाँ? जीवा से क्या करो, प्रसाद ग्रहण करो, और आंखों से क्या करो, कृष्ण के सौंदर्य को देखो। कृष्ण को और अधिक अप्रिशिएट कर सकते हो उनकी सुंदरता को, जब उनकी महिमा को आप क्या करते हो, कानों से अधिक सुनते हो, तब आपकी आंखों में प्रेम का अंजन आता है, तब वास्तव में आप भगवान को देख सकते हो। हाँ, इसलिए कहते पश्यन्ति ज्ञान विमुडा नानु पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख व्यक्ति नहीं देख पाता, वो कहते अरे ये तो लकड़ का मूर्ति है। हाँ, लेकिन भगवान गीता में कहते पश्यन्ति, देखता है कौन, ज्ञान चक्षुषा, आध्यात्मिक नॉलेज के साथ हम देख सकते हैं भगवान को, अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि जीवन को इस प्रकार से बनाए कि हम अधिक से अधिक कृष्ण का स्मरण कर पाए, अधिक से अधिक कृष्ण के प्रति शरणागत हो पाए, और अधिक से अधिक अपने जो भी हमारे पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, हाँ, चाहे हर प्रकार की जो भी फैसिलिटी हमारे पास है, उसको अधिक से अधिक कैसे कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना है। क्योंकि कृष्ण की सेवा में हम नहीं लगाएंगे तो नेचुरली वो माया की सेवा में लगेगा, और जिससे हम कष्टों को आमंत्रण देंगे, विपदाओं को आमंत्रण देंगे। तो ब्रजवासी बनने का भावना है तो वो कैसे बन सकते हैं हम, हाँ, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर। और कृष्ण के अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना मतलब कृष्ण से संबंधित कार्यकलापों को करना। सबसे पहला कार्य क्या करना, सबसे उठते ही पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे नाम का उच्चारण करना, गीता भागवतम आदि को पढ़ना, भक्तों से संग लाभ करना, श्रवण करना, सेवा के लिए तत्पर रहना। हाँ, ब्रजवासी भागते थे सेवा के लिए। हाँ, तो ये सब चीजें हमें करनी चाहिए, तभी हम ब्रजवासी बन सकते हैं और कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है, अकेले व्यक्ति ने, हाँ, भगवान जगन्नाथ को ले गए पूरे विश्व में। तो ऐसे जगन्नाथ की कृपा प्रभुपाद के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है कि हम क्या करें, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें, हाँ, उन ग्रंथों को समझें, और साथ ही साथ आप सब जानते हैं श्रील प्रभुपाद ने एक मैगजीन शुरू किया था जिसका नाम क्या था, बैक टू गॉड है, या भगवत दर्शन, यहाँ भी है भगवत दर्शन। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो कहाँ से बोल रहा हूँ, इस मैगजीन से। अभी रिसेंटली एक मैगजीन आया था, जब भी मैंने बोला उसी में से बोला है पढ़कर। तो ये जो मैगजीन है, श्रील प्रभुपाद ने कहा ये हमारे मूवमेंट का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी वो है, तो उसके बिना आप ना बैठ सकते हो ना चल सकते हो। तो इसलिए ये ऐसा मैगजीन है कि जिससे आप कृष्ण कथा से क्या रहोगे, अपडेट रहोगे, कृष्ण कथा से आप भरे भर जाओगे। इसलिए जैसे भौतिक जगत में भी लोग न्यूज़पेपर मंगाते हैं, मैगजीन से, टाइम मैगजीन वगैरह, हम क्यों नहीं, हम कृष्ण की ओर जाना चाह रहे हैं तो हमें इस प्रकार से वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि हम क्या करें, अधिक से अधिक कृष्ण के नजदीक जाए। तो ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, हमारे डिवोटीज है यहाँ, आप मिलो उनको और आप कहो कि मुझे क्या करना है, इस मैगजीन का सदस्य बनना है। और बहुत सरल विधि है और बहुत छोटा सा अमाउंट है, हर महीने में ये मैगजीन पब्लिश होती है, कलरफुल मैगजीन है और कई सारे आर्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कथा। जैसे अभी जगन्नाथपुरी रथ यात्रा थी तो उसी के ऊपर पूरा मैगजीन आया, उसी के जगन्नाथ के बारे में हर डिटेल चीज। हाँ, किस प्रकार से आप इससे इससे लाभ उठा सकते हो और हमारे डिवोटी से मिल सकते हो, इस ग्रेस पद्मपुरी प्रभु वो इसको फैला रहे हैं पूरे फरीदाबाद में और दिल्ली में, और हजारों लाखों लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो ये एक उपाय है जगन्नाथ के नजदीक जाने का। हरे कृष्णा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथ पुरी धाम के।